सिद्धेव्य ॐ नमः सिद्धेव्य ॐ नमः सिद्धेव्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वशायाणं नमो लोये सौवसाहूणं कम्मठजनियवेयण उवहि समुत्तिर्णये जिणेणमिऊं वेयणमहाहियारं विविहियारं परूवेमो। यह श्री वीरसेनाचार्य रचित धौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। दसवीं पुस्तक जो चतुर्थ खंड वेदना खंड, उसमें वेदना अनुयोग द्वार में अभी हम पृष्ठ संख्या 121 पर आ गए हैं। हम देखते यहाँ ये अपना प्रकरण चल रहा है, ये एक समय प्रबद्ध जो बनता है उसमें जो निषेक रचना होती है उसमें अनेक निषेकों की एक गुणहानी और अनेक गुणहानियों को नाना गुणहानी कहते हैं, तो उसमें कितनी कितनी संख्या होती है परमाणु की, उसकी बात हम देख रहे हैं। देखो अभी यहाँ पहला पैराग्राफ वहां से पढ़ते हैं। अल्प बहुत्व की बात चल रही थी अपनी, पहले तो कौन सा निषेक बड़ा है वो बात बताई, फिर अभी अन्योन्य अभ्यस्त राशि का अल्प बहुत्व कह रहे हैं। आयु कर्म की अन्योन्य अभ्यस्त राशि सबसे स्तोक है यानी कम है, उससे नाम व गोत्र की अन्योन्य अभ्यस्त राशि असंख्यात गुणी है। देखिए ये तो नाना गुणहानी शलाकाय कहो या कर्मस्थिति कहो, वो तो संख्यात गुणी है, परंतु संख्यात गुणी होने पर भी अन्योन्य अभ्यस्त राशि निकालते समय उसको दो गुना दो करते हैं, नाना गुणहानी प्रमाण संख्या दो बार दो 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 लिखकर, इसलिए अन्योन्य अभ्यस्त राशि असंख्यात गुणा में चली गई। आयु कर्म से नाम गोत्र की कर्म की स्थिति कितनी है तो संख्यात गुणा होगी ना। मान लेते आयु की सागरों में भी अगर नापेंगे और ये 10 कोड़ाकोड़ी सागर हो या 20 कोड़ाकोड़ी सागर हो जाए नाम कर्म की, तो भी वो संख्यात गुणा में आ जाएगी, परंतु उतनी बार नहीं समझे। 10 कोड़ाकोड़ी सागर कहो या कुछ सागर कहो तो उसका आपस में तो संख्यात गुणा का डिफरेंस है, परंतु अन्योन्य अभ्यस्त राशि में तो असंख्यात गुणा का हो जाता है। उससे 30 कोड़ाकोड़ी प्रमाण स्थिति वाले ज्ञानावरण आदि की अन्योन्य अभ्यस्त राशि परस्पर समान होकर के असंख्यात गुणी है। परस्पर किसके? ज्ञानावरण की, दर्शनावरण की, अंतराय की, वेदनीय की, आपस में परस्पर है, परंतु नाम गोत्र से वो अन्योन्य अभ्यस्त राशि असंख्यात गुणा है। उससे मोहनीय की अन्योन्य अभ्यस्त राशि असंख्यात गुणी है। इस प्रकार प्रमाण प्ररूपणा समाप्त हुई। अब कर्मों में नाना गुणहानी शलाकाएं सबसे स्तोक है, लिखा ना सब कर्मों की नाना गुणहानी शलाकाएं सबसे स्तोक है तो असंख्यात, फिर भी कंपैरिजन किसमें कर रहे हैं? अभी एक गुणहानी की शलाका कितनी उसको कहेंगे। उनसे एक प्रदेश गुणहानी स्थानांतर असंख्यात गुणा है, यानी एक गुणहानी में निषेकों की संख्या नाना गुणहानियों से असंख्यात गुणी है। गुणकार क्या है? तो गुणकार पल्योपम का असंख्यातवा भाग है, जो पल्योपम के असंख्यात प्रथम वर्गमूल मात्र है। ये पल्योपम का असंख्यातवा भाग पल्योपम के प्रथम वर्गमूल प्रमाण कैसे है उसकी हमने बहुत विस्तार से चर्चा की, अभी अभी भी की थी और पहले भी बहुत विस्तार से की थी। अल्प बहुत समाप्त हुआ। अब सर्वप्रथम इस संदृष्टि का, जो संदृष्टि ऊपर टेबल लिखा है इसी पृष्ठ पर, उसका विन्यास क्रम कहते हैं। विन्यास क्रम यानी प्रत्येक निषेकों में कितनी संख्या है। यथा यहाँ संदृष्टि में समय प्रबद्ध का प्रमाण 6300 ग्रहण किया है। ये काल्पनिक संख्याएं ग्रहण करके हमें समझाने के लिए आचार्यों ने इसको लिखा है। कर्मस्थिति की दीर्घता का प्रमाण 48 है। कर्मस्थिति यानी यहाँ पर निषेकों की संख्या 48 है, टोटल निषेक। नाना गुणहानि शलाकाएं 6 है। इससे 48 समय प्रमाण कर्मस्थिति को अपवर्तित करने पर लब्ध 8 समय प्रमाण 1 गुणहानि होती है। टोटल स्थिति को नाना गुणहानि से भाग देंगे तो 1 गुणहानि का प्रमाण आएगा। ये स्थिति वो प्रिंट बराबर करना है। गुणहानि को द्विगुणित करने पर यानी 2 गुणा करने पर निषेक भागहार का प्रमाण 16 होता है। ये निषेक भागहार से हम निषेक भागहार से पहले निषेक को भाग देते हैं तो उस गुणहानि का पर्टिकुलर गुणहानि का चय आता है। जैसे 512 को हमने 16 का भाग देंगे तो वहां का चय 32 आएगा। प्रथम निषेक का प्रमाण 512 है। निषेक भागहार का यही बात बताई है। निषेक भागहार का यानी अभी हमने 16 मान लिया है। प्रथम निषेक में भाग देने पर 512 में भाग देने पर लब्ध 32 है। उसको कहते हैं गोपुच्छ विशेष। गोपुच्छ विशेष कहो, चय कहो, विशेष कहो, प्रचय कहो, उत्तर कहो, ये सब एकार्थवाची नाम है। तो गोपुच्छ विशेष का प्रमाण है। इससे आधा यानी 16 द्वितीय गुणहानि का गोपुच्छ विशेष है। इससे आधा 8 तृतीय गुणहानि का गोपुच्छ विशेष है। इस प्रकार कर्मस्थिति की अंतिम गुणहानि तक एक एक गुणहानि के प्रति गोपुच्छ विशेष आधा आधा हीन होता हुआ चला जाता है, आधा आधा होता हुआ चला जाता है। अन्योन्य अभ्यस्त राशि का प्रमाण 64 है। नाना गुणहानि प्रमाण 2 संख्या लिखकर आपस में गुणा करेंगे तो अन्योन्य अभ्यस्त राशि आती है। तो नाना गुणहानि शलाका अभी अभी हमने 6 मान ली है तो 6 बार 2 को आपस में गुणा करेंगे तो 64 आती है। इस प्रकार संदृष्टि को स्थापित कर अब अवहार काल को कहते हैं। कहीं भी हमने अभी तक देखा था अवहार काल किसको कहना, कि जो पूरा द्रव्य है उसको जिस संख्या से भाग देने पर हमें जो रिक्वायर्ड स्पेसिफिक फिगर आएगी उसको कहेंगे उसका वो अवहार काल है। जैसे हमें प्रथम निषेक की संख्या कितनी है, 512 है और टोटल द्रव्य हमने 6300 मान लिया है। ऐसे कौन से संख्या से 6300 को भाग देने पर 512 आएंगे उसको कहेंगे वो प्रथम निषेक का अवहार है या भागहार है। मोहनीय का एक समय प्रबद्ध उसके प्रथम स्थिति प्रदेशाग्र के द्वारा कितने काल से अपहृत होता है, ये इसकी भाषा है। क्या कहते हैं, मोहनीय का एक समय प्रबद्ध कितने काल से अपहृत होता है, यानी कौन से संख्या से भाजित होता है, कौन से संख्या से उसको भाग देंगे तो प्रथम स्थिति का प्रदेशाग्र आएगा, प्रथम निषेक का द्रव्य आएगा। तो कहते हैं डेढ़ गुणहानि स्थानांतर काल के द्वारा अपहृत होता है। डेढ़ गुणहानि का जितना काल है, अभी हमने मान लिया है 8 समय की एक गुणहानि, डेढ़ गुणहानि 12 की हो जाएगी। उससे प्रथम निषेक के द्वारा वो मोहनीय का समय प्रबद्ध अपहृत होता है। इन 6300 को डेढ़ गुणहानि से भाग देंगे तो 512 संख्या आती है। यथा अब उसी को समझाते हैं गणित के द्वारा। प्रथम गुणहानि के प्रथम निषेक को स्थापित कर गुणहानि से अर्थात एक गुणहानि के काल से गुणित करने पर गुणहानि प्रमाण प्रथम निषेक होते हैं। ये अभी पहले गुणहानि में पूरा द्रव्य कितना है उसको निकाल रहे हैं। तो पहला निषेक है 512 का और गुणहानि 8 की, तो उसी के समान पूरे निषेक अगर हम मानेंगे चय घटाए बिना तो 512 8 बार लेना है तो उसको कहेंगे 8 प्रथम निषेक होंगे। 512 इंटू 8 इसी को कहा यहाँ 8 प्रथम निषेक है। प्रथम निषेक की अपेक्षा द्वितीय निषेक एक गोपुच्छ विशेष से हीन है, एक चय उसमें कम है। हमने अभी अभी देखा था ना 32 उसकी संख्या है, दूसरे निषेक में 32 कम है। तृतीय निषेक 2 गोपुच्छ विशेषों से और चतुर्थ निषेक तीन गोपुच्छ विशेषों से हीन है। ऐसे कितने करने पड़ेंगे गुणहानी के अंतिम निषेक में? सात गोपुच्छ विशेष, यानी टोटल गोपुच्छ विशेष कितने हो गए? 1+2+3+7 तक, उसको कहते हैं सात का संकलन धन। हाँ, उसको कैसे निकालना कि सात को उसके आगे वाली संख्या आठ से गुणा करेंगे और दो से भाग देंगे तो उसका संकलन धन आता है। तो कहते इस प्रकार जाकर प्रथम गुणहानि का अंतिम निषेक कितना होगा? एक कम गुणहानि प्रमाण गोपुच्छ विशेषों से हीन है। एक कम गुणहानि ने सात, सात प्रमाण गोपुच्छ ने सात बार छह, उससे हीन है अंतिम निषेक। यानी 32 को सात से गुणा करेंगे और 512 में से वो संख्या माइनस करेंगे तो अंतिम निषेक की संख्या आएगी। इसलिए प्रत्येक गुणहानि में एक कम गुणहानि के संकलन प्रमाण गोपुच्छ विशेष अधिक होते हैं। अधिक होते हैं वो अभी हमने 512 की संख्या से अगर हिसाब किया तो वो अधिक है, उसको माइनस करना पड़ेगा। अब एकादि एकोत्तर वृद्धि रूप, एक आदि एक से शुरू होकर एकोत्तर वृद्धि ने एक एक से वृद्धि हुई ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसको कहते एकादि एकोत्तर। इन एक कम गुणहानि प्रमाण स्थानगत यानी सात वाले सात बार गोपुच्छ विशेषों का अपनयन करते हैं, यानी सात के संकलन धन की जो संख्या आएगी उतने तो चय लेना और उसको माइनस करना, अपनयन करना यानी उसके बाद करना उसमें से। यथा मूल से अग्र तक के इन गोपुच्छ विशेषों को जोड़ करने पर एक कम गुणहानि के आधे भाग प्रमाण जो प्रथम निषेक है उनके आधे भाग प्रमाण होते हैं। एक कम गुणहानि यानी सात, आठ माइनस वन है ना, उसका आधा करेंगे और वो 512 प्रथम निषेक प्रमाण करेंगे और उसका फिर भाग देंगे दो का, तो उसकी संख्या थी 896। यहाँ लिखा है ब्रैकेट में वो माइनस लास्ट ने उसको इज इक्वल टू करना है। पुनः उन दो दो भागों को इकट्ठा करने पर अभी ये जो संख्या लिखी है नीचे छेद में दो गुना दो है, उसको हम चार कर सकते हैं। 512 को अलग रखेंगे, 8-1/4 करेंगे। हाँ, तो उन दो दो भागों को इकट्ठा करने पर एक चौथाई कम गुणहानि के चतुर्थ भाग मात्र प्रथम निषेक होते हैं, यानी वो संख्या तो उतनी है ना 896, तो वो कितना घटा उसमें से? तो एक चौथाई कम गुणहानि के चतुर्थ भाग, फिर इन प्रथम निषेकों को गुणहानि प्रमाण प्रथम निषेकों में से कम करने पर एक चतुर्थ भाग अधिक गुणहानि के तीन चतुर्थ भाग मात्र प्रथम निषेक शेष रहते हैं। देखो यहाँ क्या कहना चाहते हैं, ये हमने देखा था ना ऊपर जो ब्रैकेट में लिखा है, इसके पहले फाइनल संख्या कितनी आई, प्रथम निषेक 512 को अलग रखा मल्टीप्लाइड बाय ये जो ब्रैकेट में है 8-1/4 लिखा था ना, उसको उन्होंने दो भाग में बांटा, 8 को 4 से भाग दिया फिर माइनस एक चतुर्थांश, वही फिगर आती है। तो ये जो संख्या आएगी वो कितनी आती है? तो 512 मल्टीप्लाइड बाय कितने आ गए अभी, 7/4 आ गए ना, 7/4। 7/4 का कितना होता है? 1.3/4। इतने प्रथम निषेक कम करना है, आठ में से कितने प्रथम निषेक कम करना है? एक पूरा और 3/4। तो उसी अभी ये वाक्य फिर पढ़ते हम, अभी हमने जो बड़ा वाक्य पढ़ा था ना ब्रैकेट के बाद, स्क्वायर वाले ब्रैकेट के बाद, फिर इन प्रथम निषेकों को गुणहानि प्रमाण प्रथम निषेकों में से कम करने पर, हमने आठ बार प्रथम निषेक लिए थे, पूरे गुणहानि को मान लिया था प्रथम निषेक के समान, अब उसमें से ये कम करने हैं, कितने 1.34 एक पूर्णांक 3/4 करने पर 1/4 भाग अधिक गुणहानि के 3/4 भाग मात्र प्रथम निषेक शेष रहते हैं। अभी गुणहानि का चतुर्थ भाग कितने, 1/4 भाग अधिक गुणहानि के 3/4 भाग, गुणहानि के 3/4 भाग यानी 8 का 3/4 6 और 1/4 यानी 8 में से हमने 1.34 बाद किए तो 6.14 बाकी रहे, निषेक शेष रहते, क्योंकि गुणहानि में गुणहानि के कुछ कम 1/4 भाग का अभाव है, क्योंकि उतना चय कम घटता गया था इसलिए इतना कम हो गया। उनकी यह संदृष्टि स्थापित करनी चाहिए। प्रथम गुणहानि का द्रव्य 3200, ये जो सारी टोटल अभी हमने देखी थी, पहले तो 512 इंटू 8 किए और उसमें से वो घटाया तो 512 इंटू वो कितने बार हो गए, 6.25 बार, तो उसकी संख्या उन्होंने निकाली है वो 3200 आती है। उसे प्रथम निषेक के प्रमाण से विभाजित करने पर वह इस शक्ल में प्राप्त होता है, 512 ने प्रथम निषेक प्रमाण, अगर हम इसको स्थापित करेंगे पूरे द्रव्य को तो 6 बार तो पूरे 512 लेना और बाद में 512 का चतुर्थांश यानी 128 रह जाएंगे। प्रथम गुणहानि के प्रथम द्रव्य, प्रथम गुणहानि के द्रव्य को प्रथम निषेक के प्रमाण से करने पर इतना होता है, प्रमाण से यानी उसका एक यूनिट बनाएगा, 512 का एक यूनिट एक, तो 3200 में कितने हो जाएंगे, तो 512 6 बार और 1 बार 128। शेष गुणहानियों के द्रव्य को पहले गुणहानि छोड़कर जो शेष द्रव्य है उसको भी अपने अपने प्रथम निषेक के प्रमाण से करने पर, अभी दूसरे गुणहानि का प्रमाण, पहला प्रमाण निषेक है 256, तो वहां भी 256 के प्रमाण से करने पर कितने हो जाएंगे, 6 बार 256 और 1 बार उसके 64, 1/4 यानी 64, उसके आगे वाला जो है वो 128 वाला है, तो 6 बार 128 हाँ और 1 बार 32, इसी तरह से आगे आगे की गुणहानि का होगा। और वहां का जो टोटल द्रव्य होगा, पहले का तो 3200 है, अभी 3200 एक बार रख देना बाजू में, और आगे वाला कितना होगा, हाँ सबकी टोटल 3100, क्योंकि 1600 प्लस 800 प्लस 400 प्लस 200 प्लस 100 ये 3100 हो जाएगी सबकी मिलकर, तो शेष गुणहानियों के द्रव्य को मिलाकर उतनी हो जाएगी। उसको यानी सब गुणहानियों के द्रव्य को मिलाने पर वह सब अंतिम गुणहानि के द्रव्य से हीन प्रथम गुणहानि का द्रव्य मात्र होता है। ये सबकी टोटल कितनी है, 3100, और पहले अकेले पहले की है 3200, तो वो कितना है शेष गुणहानियों का, तो शेष गुणहानियों में अंतिम जो गुणहानि 100 वाली वो उसमें और मिला दो तो दोनों समान हो जाएंगे, इसलिए कहा अंतिम गुणहानि से हीन प्रथम गुणहानि मात्र उसकी संख्या आती है। अभी इसी को बताया 1600 800 400 200 100, ये मिलकर 3100 होते हैं, वो कितना है पहले गुणहानि के द्रव्य में से अंतिम गुणहानि माइनस करेंगे उतना शेष गुणहानियों का द्रव्य है। पुनः इसमें अंतिम गुणहानि के द्रव्य को मिलाने पर प्रथम गुणहानि के द्रव्य के बराबर होता है। हम गणित के लिए उसमें ऐड करके गणित करेंगे तो वो भी 3200 हो जाएगा, यानी टोटल द्रव्य कितना हुआ, अभी 6.25 यहाँ देखे थे, 6.25 प्रथम निषेक देखे थे ना, अब वहां भी 6.25 प्रथम निषेक हो जाएंगे, तो ये 3100 प्लस 100 3200 प्रथम गुणहानि का द्रव्य। शंका, अंतिम गुणहानि के द्रव्य का प्रक्षेप किस लिए किया जाता है, तो कहते हैं संपूर्ण डेढ़ गुणहानि को उत्पन्न कराने के लिए उसका प्रक्षेप किया गया है। देखो अभी प्रथम निषेक प्रमाण हमको करना है तो संपूर्ण वो जो गुणकार है वो 12 आना चाहिए, संपूर्ण गुनाह नहीं कर, डेढ़ गुनाह नहीं करना है ना उसका। तो पहले हमने छह देखे थे, प्रथम निषेक छह लिखे छह बार, और फिर उसका सवा छह किया, और यहां भी सवा छह, तो दोनों मिलकर साढ़े बारह आ गए, यानी डेढ़ गुनाहानि का आया ना द्रव्य, थोड़ा ज्यादा है परंतु डेढ़ गुनाहानि आया, बारह हमको लेना है उसमें से। तो प्रथम निषेक को डेढ़ गुनाहानि से गुणा करने पर पूरा द्रव्य आएगा, वह भी किस लिए? तो कहते हैं अव्युत्पन्न साधुजनों को उत्पन्न कराने के लिए वैसा किया गया है। अब उसकी संदृष्टि वही जो हमने पहले देखी थी, 512 छह बार और 128 लिया, उसकी संख्या 32 होती है। प्रथम गुणहानी के तीन चतुर्थ भाग मात्र प्रथम निषेकों में, देखो प्रथम गुणहानी का तीन चतुर्थांश भाग यानी छह बार प्रथम निषेकों में, द्वितीय आदि यानी दो से लेकर आगे के गुणहानियों के प्रथम गुणहानि रूप से उत्पन्न हुए तीन चतुर्थ भाग मात्र प्रथम निषेकों के मिलाने पर, अभी अन्य जो द्वितीय आदि गुणहानियों का द्रव्य कितना है, हाँ तो उसके समझाने के लिए कि प्रथम गुणहानि से उत्पन्न हुए तीन चतुर्थ भाग मात्र प्रथम निषेकों के मिलाने पर, यानी वही उसको हम प्रथम निषेक जो 512 है उसके प्रमाण से करेंगे तो वहां भी वो सवा छह हो जाएगी, उसमें 100 एक्स्ट्रा मिलाए थे, तो ये दोनों की संख्या अगर मिलाएंगे, यहाँ के सवा छह वहां के सवा छह, तो डेढ़ गुणहानि प्रमाण प्रथम निषेक होते हैं, क्योंकि प्रथम निषेक का अर्ध भाग इसमें कम किया गया है, ये अर्ध भाग कम करके 12 संख्या आएगी, साढ़े बारह होती है उसमें से अर्ध भाग कम किया तो 12 यानी डेढ़ गुणहानि प्रमाण आ गया। संदृष्टि में डेढ़ गुणहानि का प्रमाण 12 है, इससे प्रथम निषेक को गुणित करने पर समय प्रबुद्ध का प्रमाण इतना होता है 512 गुना 12 6144। ये एग्जैक्ट डेढ़ गुणहानि की फिगर बताएंगे, क्योंकि आगे की जो हमको संख्याएं निकालनी है वो आसान हो इसलिए। अब इसी का विशेषार्थ बताते हैं। प्रथम गुणहानि के द्रव्य में 6.25 प्रथम निषेक प्राप्त होते हैं, यानी 6.25 बार प्रथम निषेक। द्वितीय आदि सब गुणहानियों के द्रव्य में दो से लेकर अंत तक का मिलकर सब इकट्ठा अंतिम गुणहानि का द्रव्य दूसरी बार मिलाने पर भी इतने ही प्रथम निषेक प्राप्त होते हैं। वहां की संख्या 3100 थी परंतु गणित के लिए हमने 100 और मिला दिए। इनको जोड़ने पर साधिक डेढ़ गुणहानि प्रमाण प्रथम निषेक आते हैं, पर यहां आधा निषेक कम कर दिया है इसलिए सब निषेक डेढ़ गुणहानि प्रमाण बतलाए हैं। इस हिसाब से समय प्रबद्ध का कुल द्रव्य 6144 होता है, क्योंकि 512 को 12 से गुणा करने पर इतना ही द्रव्य प्राप्त होता है। ये तो उन्होंने विशेषार्थ बतलाया, अभी इसी बात को क्षेत्र की अपेक्षा समझाएंगे, क्योंकि हम देखते हैं ना प्रथम निषेक गुणा डेढ़ गुणहानि यानी 512 गुणा 12 इज इक्वल टू 6144। इसको क्षेत्र की अपेक्षा से बताएंगे, किसी भी चौकोर वस्तु का क्षेत्र है तो दो भुजाओं का हम गुणाकार करते हैं तो पूरा क्षेत्रफल आता है, वैसे 512 एक बाजू और एक बाजू 12 लेंगे तो उसका गुणाकार यानी उसका पूरा क्षेत्र कितना होगा, तो 6144। अभी इसी में अभी हम देखेंगे आगे आगे के निषेकों के प्रमाण से करने पर पूरा द्रव्य तो उतना ही रहने वाला है, 512 की अपेक्षा है डेढ़ गुणहानि से गुणाकार करना है। आगे वाला निषेक जो है 480 वाला, उसी अपेक्षा से अगर बात करेंगे तो टोटल द्रव्य को 480 से भाग देंगे, यानी 512 को कम करके 480 बनाएंगे और ये जो ऊपर की जो क्षेत्र निकला है वो दूसरी बाजू जोड़ देंगे तो आगे आगे वाली संख्या आएगी अपने को। तो क्षेत्र की अपेक्षा प्रथम निषेकों का विस्तार डेढ़ गुणहानि प्रमाण आयत क्षेत्र होता है, यानी इस तरह से यहाँ 512 लेना और यहाँ डेढ़ गुणहानि ने 12 लेना, तो ये आयत क्षेत्र आया। ऐसा क्षेत्र की अपेक्षा भी समझाएंगे इसको। यतः यानी क्योंकि प्रथम निषेक के प्रमाण से करने पर सब द्रव्य इतना होता है, अतएव सब द्रव्य को प्रथम निषेक से अपहृत करने पर डेढ़ गुणहानी स्थानांतर काल से अपहृत होता है, ऐसा कहा है। ये इसकी पद्धति है कहने की कि प्रथम निषेक से अपहृत करने पर डेढ़ गुणहानी प्रमाण उसका उससे अपहृत होता है। अब द्वितीय निषेक के प्रमाण से, अब हमको एक यूनिट बनाना है 480 का द्वितीय निषेक प्रमाण। द्वितीय निषेक के प्रमाण से सब द्रव्य साधिक डेढ़ गुणहानी द्वारा अपहृत होता है। देखो अभी संख्या हमें कम चाहिए तो भागाहार अभी बढ़ता चला जाएगा। यथा पूर्वोक्त डेढ़ गुणहानी क्षेत्र में से एक गोपुच्छ विशेष प्रमाण विस्तार वाली, अभी हमको क्या करना है, 32 अपना चय है तो 512 में से 32 कम करेंगे तो इतना क्षेत्र निकालेंगे और इसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे, इसमें तो इसके इतने ऐसे पीसेस बनाएंगे तो 480 डिवाइडेड बाय 32 इतनी संख्या आएगी ना, 16 दुनी 32 ये 15 संख्या आएगी। तो इसके डेढ़ गुणहानि में से 15 पीसेस करके यहाँ जोड़ देंगे, बराबर है ना, तो 480 हो जाएगी। परंतु इसके डेढ़ गुणहानि के ने 12/15 ऐसी संख्या आ जाएगी, डेढ़ गुणहानि में इतना ऐड होगा, ख्याल आता है ना। ये क्षेत्र 32 को हमने डेढ़ गुणहानि प्रमाण से निकाला, अब ये 32 कितने बार करेंगे तो पूरे 480 आएंगे, तो 15 बार, तो ऐसे वर्टिकली इसके 15 पीसेस करेंगे तो 12 के हमने 15 पीसेस किए, 12 पंद्रह अंश यानी 3 चौक 12 नहीं था, 3 5 15 4 पंचम अंश। तो पहले हमने 12 गुणहानी देखी थी, उसमें 4 पंचम अंश ऐड करने पड़ेंगे। देखो अभी इसको पढ़ते हैं, अभी हम फिर यथा से पढ़ते हैं। पूर्वोक्त डेढ़ गुणहानी क्षेत्र में से एक गोपुच्छ विशेष 32 का है वो प्रमाण विस्तार वाली डेढ़ गुणहानी प्रमाण दीर्घ फाली रूप क्षेत्र को छील कर अलग करने पर शेष क्षेत्र द्वितीय गोपुच्छ मात्र विस्तार वाला वह डेढ़ गुणहानी प्रमाण दीर्घ रह जाता है। अब यानी ये जो नीचे का जो रहा है वो 480 और डेढ़ गुणहानी इतना रह जाएगा, यानी 480 गुना 12 रह जाता है। अब अलग की हुई फाली को, अलग की हुई फाली कितनी है, 32 गुना 12। प्रकृत गोपुच्छ ने द्वितीय निषेक के प्रमाण से करने पर एक भी प्रकृत गोपुच्छ नहीं होता, क्योंकि गुणहानि के आधे में से एक कम गोपुच्छ विशेषों को, गोपुच्छ विशेषों का वहां अभाव है, इसलिए इसका विकल रूप आधार होता है। अब उसका प्रमाण लाते हैं, अब उसका प्रमाण कैसा लाना है उसको देखेंगे। एक कम निषेक भागार प्रमाण गोपुच्छ विशेषों का विरलन करने पर कितने बार करना पड़ेगा, विरलन किसका करेंगे, हाँ एक कम निषेक भागार, निषेक भागार है 16 का, एक कम निषेक भागार है 15 यानी 15 गोपुच्छ विशेषों का विरलन करने पर यदि डेढ़ गुणहानी में एक अंक का प्रक्षेप प्राप्त होता है, डेढ़ गुणहानी में एक अंक का प्रक्षेप होता है तो डेढ़ गुणहानी मात्र गोपुच्छ विशेषों का विरलन करने पर क्या होता होगा, तो जो हमने 12 पंद्रह अंश निकाले थे दैट इज इक्वल टू 4 पंचम अंश। इस प्रकार समान राशि का अपनयन कर, ये ख्याल में आया त्रैराशिक, 15 में 1 तो 12 में कितना, हमने देखा था ना इसके 15 पीसेस करेंगे वर्टिकली तो इसका एक निषेक होगा, यानी गुनहाने कितनी होगी, वो चार पंचमांश ही हो गई, तो डेढ़ गुनहाने में वो चार पंचमांश ऐड करना पड़ेगा। बारह पंद्रह अंश, उसको हमने तीन का भाग दिया ना, हाँ। तो एक निषेक तैयार हुआ, पर उसकी विड्थ कितनी हो गई अभी, चार पंचमांश, चार पंचमांश गुणहानि, हाँ। नहीं खाली चार पंचमांश गुणहानि नहीं, चार पंचमांश, इतना बड़ा, बारह के बदले चार पंचमांश हुआ, गुणहानि के इसमें नहीं है लेना, डायरेक्ट हमने फिगर निकाली, पहले बारह था अभी वो चार पंचमांश हुआ, ये बारह पूर्णांक चार पंचमांश हो जाएगा, हाँ। इस प्रकार ये हो गए, समान राशि का अपनयन कर एक कम निषेक भागार का डेढ़ गुणहानि में भाग देने पर, एक कम निषेक भागार यानी पंद्रह का डेढ़ गुणहानि में यानी बारह में भाग देने पर, एक अंक का साधिक तीन बटे चार भाग आता है, उसे डेढ़ गुणहानि में मिलाकर उसका सब द्रव्य में भाग देने पर द्वितीय निषेक आते हैं, इसीलिए द्वितीय निषेक की अपेक्षा सब द्रव्य साधिक डेढ़ गुणहानि से अपहृत होता है, यह सिद्ध होता है। पहले बारह था वो डेढ़ गुणहानि थी, अभी उसमें चार बारह पूर्णांक चार पंचमांश, वो साधिक डेढ़ गुणहानि हो गई। विशेषार्थ, कुल द्रव्य 6144 है, इसमें द्वितीय निषेक 480 का भाग देने पर बारह पूर्णांक चार बटे पांच आते हैं, ये डायरेक्ट निकाला भाग देने पर। यही कारण है यहाँ सब द्रव्य में द्वितीय निषेक का भाग देने पर वह साधिक डेढ़ गुणहानि से अपहृत होता है, यह सिद्ध किया। तृतीय निषेक के प्रमाण से, अभी वो डेढ़ गुणहानि के लिए हमने जो लेता, अभी इसमें से दो कम करने पड़े, 32 और 32, तो तृतीय निषेक आएगा अभी, तो तृतीय निषेक के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी 64 आया और तृतीय निषेक कितना है, 480 के बदले अभी उसमें से 32 गए, 58 है ना, 458, 32, 48, 448, तो ऊपर 32 और 32 64 वाला पीस निकलेगा और नीचे 448 रहेंगे। पहले हम करेंगे ना, बाद में पढ़ेंगे, अभी 64 का एक पीस, तो 448 के लिए उसमें से कितने पीसेस बनाएंगे वर्टिकली, 16 चौक 64, 16 दूनी 32, 32 12, 16 8 28, ऐसे 4 7 28, 7 आया, यानी इसके वर्टिकली 7 पीसेस बनाएंगे हम, तो 12 के 7 भाग हो गए, यानी 7 12 अंश हो जाएंगे। पहले 15 12 अंश किए थे ना, 32 था, अभी हमको 7 पीसेस में एक निषेक बन जाएगा, तो 12 पूर्णांक 7 12 अंश, नहीं नहीं चार पंचमांश नहीं, हमने पहले से ही, हमने डायरेक्ट पहले से ही कंपेयर किया है, हाँ। सात बटा बारह करना, एक गुणहानि का प्रमाण, डेढ़ गुणहानि का प्रमाण 12 है, 12 में हमने 7 पीस बना दिए और 7 पीसेस वर्टिकली जोड़ दिए, तो 448 वाला हमको एक निषेक प्राप्त हुआ। अब इसको पढ़ते देखो, तृतीय निषेक के प्रमाण से सब द्रव्य के अपरत करने पर वह साधिक डेढ़ गुणहानि से अपरुत होता है। यह भी पूर्व क्षेत्र में से दो फालियों को छील करके अलग करने पर शेष क्षेत्र प्रकृत गोपुच्छ ने तृतीय निषेक, गोपुच्छ ने निषेक और गोपुच्छ विशेष ने चय उसके प्रमाण विस्तृत और डेढ़ गुणहानि आयत होकर स्थित रहता है। अलग की हुई दो फालियों में दो प्रक्षेपंक नहीं उत्पन्न होते हैं। ये 12/7 करना है, 12/7 करना है। मैंने उल्टा बताया ना, पहले 15 पीसेस किए थे, 15/12 किया था, 12/15 किया था, अब हाँ अब 12/7 हुआ। 7 पीसेस हुए ना उसके, पहले 15 पीसेस किए थे, यानी अभी 15 में 1 तो 12 में कितना ऐसा किया था, अभी 7 में 1 तो 12 में कितने, तो 12/7 हो जाएगा, यानी 1.5 सप्तमांश आ जाएगी। अपूर्णांकों में, पूर्णांकों में करने पर देखो, नहीं 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 देखो 64 निकाला हमने, 512 था, देखो दो लाइन है ना, हमको आयत निकालना है रेक्टेंगल, उसमें से एक लाइन है तो वो 512 की है और दूसरी है 12 की है, 512/12 ये हमारा क्षेत्रफल है। अभी इसके जैसे हम रूम है ना अपनी, वैसे इसको मापते हैं, तो क्षेत्रफल तो कायम रखना है, जो पीस निकालेंगे वो कहीं एडजस्ट करने करके हमको साइड में लगा देना उसको। तो उसमें से हमने दो फाली 32/32 की दो फाली निकाली, दो निषेक है ना, तीसरे निषेक के लिए दो चय गए, दो चयहीन किया, तो उतना क्षेत्र हमने यहाँ से निकाल दिया। वो क्षेत्र कितना है, 64/12 में वर्टिकल हमें 7 पीसेस बनाएंगे और वो एक के एक नीचे एक जोड़ेंगे, तो 7 पीसेस 64×7=448, तो हमने वर्टिकली जोड़ दिए, तो एक एक की विड्थ कितनी है, नहीं नहीं 12/7, 12 में 7 पीसेस किए, मैंने पहले उल्टा बताया था, 12 में 7 पीसेस किए तो 12/7, पहले हमने 12 में 15 पीसेस किए थे, आसान हो गया ना, अभी वर्टिकल 7 पीसेस हमने बनाए और वो एक के नीचे एक जोड़ दिए, तो यहाँ 12 के बदले अभी कितने हो जाएंगे, 1.5 सप्तमांश बढ़ गए ना, देखो 12/7 1 पूरा और 5 सप्तमांश, यानी 12 के 13 हो जाएंगे, 13.5 सप्तमांश हो गए। पहले ओरिजिनल 12 थे ना, उसमें 1.5 सप्तमांश मिल गए, ये वर्टिकल पीसेस जोड़े उसकी विड्थ कितनी है, 1.5 सप्तमांश, वो ओरिजिनल 12 में मिला देना है क्योंकि हमने उसको जोड़ दिया उस। तो 12 में वो मिल गए तो भी उसको हम साधिक डेढ़ ही कहेंगे उसको। अभी इसी का विशेषार्थ, तृतीय निषेक का प्रमाण 448 है, इसका 6144 में भाग देने पर 13.5 सप्तमांश आते हैं। इसी से यहाँ सब द्रव्य को तृतीय निषेक के प्रमाण से करने पर वह साधिक डेढ़ गुणहानि से अपरुत होता है ऐसा कहा है। ये साधिक डेढ़ गुणहानि ही कहेंगे अभी उसको, अभी तक वो दो गुणहानि नहीं हो गई। हाँ 28/7 निकले ना, 7 आया ना, इसीलिए हमने 7 पीसेस बनाए, 64 का एक पीस ऐसे सात पीसेस में 441 का एक निषेक बन गया, परंतु उसकी विड्थ कितनी रही? तो 12 में हमने सात पीसेस बनाए थे। इस प्रकार जितनी जितनी गोपुच्छाएं यानी जितने जितने निषेक ऊपर चढ़कर भागार इच्छित हो, डेढ़ गुणानी प्रमाण उतनी उतनी फालियों को करके, उतनी उतनी फालियां करना ना, अभी हमने एक फाली, दो फाली, तीन फाली, चार फाली, ऐसे ऊपर ऊपर करेंगे हम, उतनी उतनी फालियों को करके त्रैराशिक क्रम से प्रक्षेप अंकों की सिद्धि करनी चाहिए। उसमें कितना साइड में जोड़ना है, इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी गुणहानि, ये 12 है ना, वो 12 से कितने अंक वो आगे आगे बढ़ेंगे, उसका निकालनी संख्या। अब एक गुणहानि का आधा भाग मात्र स्थान आगे जाकर स्थित निषेक के प्रमाण से सब द्रव्य के अपहृत करने पर वह दो गुणहानियों के काल से अपहृत होता है। अब अपने में गुणहानि है 8 की, 4 स्थान हम आगे गए तो क्या होगा उसमें? तो प्रथम निषेक प्रमाण चौड़े और डेढ़ गुणहानि प्रमाण लंबे क्षेत्र को स्थापित कर, फिर ऐसे स्थापित किया हमने, विस्तार की अपेक्षा 4 फालियां करके उनमें से चतुर्थ फाली की आयाम की ओर से 3 फालियां करके क्या करेंगे? अभी 512 की अभी हमने 4 फालियां की, अभी ये 64 को भूल जाओ, अभी इसको 128 करेंगे हम, तो अभी इसमें ये 4 फालियां की ना, लंबे क्षेत्र को स्थापित कर विस्तार की अपेक्षा 4 फालियां करके उनमें से चतुर्थ फाली की आयाम की ओर से 3 फालियां करके, अभी इसको 128 वाली है और नीचे कितना बचा? पाँच सौ बारह में 128 कम, या हाँ 8 × 12 384, तो 384 यहाँ रह गया, तो 128 तीन बार ले लेंगे तो 384 हो जाएगी। तो वर्टिकली इसके 3 पीस करना, 12 के 3 पीस किए, एक पीस कितने का हुआ? 12/4, 3 पीस 12/3, 3 पीसेस किए ना, यानी 12/3 का अर्थ होते 4। तो ओरिजिनल यहाँ 12 था, उसमें 4 मिलाए, 16 हुए, यानी डेढ़ गुणहानि का 2 गुणहानि हो गए। हाँ यहाँ ऊपर दिए, देखो ऊपर 3 किए ना, वो ऊपर की साइड में जोड़ दी उन्होंने, ऊपर भर्ती के लिए 3 पीसेस किए, वो एक के एक नीचे जोड़ दिए। देखो ये नीचे से दूसरी लाइन, प्रथम निषेक प्रमाण चौड़े यानी 512, डेढ़ गुणहानि प्रमाण लंबे यानी 12, 512/12 क्षेत्र को स्थापित कर विस्तार की अपेक्षा 4 फालियां करके उनमें से चतुर्थ फाली की, विस्तार की अपेक्षा 4 फालियां, 128 की 4 फालियां की, चतुर्थ फाली की आयाम की ओर से 3 फालियां करके, यानी गुणहानि जो 12 वाली है उसमें 3 फालियां करना, यानी 4-4 की एक एक फाली करना, वर्टिकल पीस करना है उसके, विस्तार को विस्तार में मिलाने पर, और वो एक के एक नीचे जोड़ देना इसके बगल में साइड में, तीनों फालियों को पार्श्व भाग में स्थापित करने पर प्रकृत गोपुच्छ प्रमाण विस्तार वाला, प्रकृत गोपुच्छ अपना 384 का है, और दो गुणहानि प्रमाण आयत क्षेत्र होता है यानी 16। इस कारण प्रकृत निषेक की अपेक्षा दो गुणहानि स्थानांतर काल से सब द्रव्य अपहृत होता है ऐसा कहा है, यानी आधी गुणहानि जाकर वो डेढ़ गुणहानि के बदले वहाँ गुणकार उसका दो गुणहानी हो जाता है, क्योंकि निषेक छोटे होते हैं इसलिए वहाँ गुणकार बढ़ता है। अथवा त्रैराशिक क्रम से प्रक्षेप अंकों को कहते हैं, यथा निषेक भागहार के तीन चतुर्थ भाग मात्र, निषेक भागहार का तीन चतुर्थ भाग कितना हुआ, 16 का तीन चतुर्थ भाग यानी 12 मात्र गोपुच्छ विशेषों में यदि एक प्रकृत निषेक प्राप्त होता है तो निषेक भागहार के एक चतुर्थ भाग मात्र गोपुच्छ विशेष विस्तार वाले, निषेक भागहार का एक चतुर्थ यानी 4 में गोपुच्छ विशेष विस्तार वाले यानी 4×32 करना भी, और 1.5× प्रमाण आयत क्षेत्र में क्या प्राप्त होगा। इस प्रकार सदृश का अपनयन करके ये कैसे त्रैराशिक किया, 12×32 में एक प्राप्त होता है तो 4×32 में कितने हो गए, 4×12×32। निषेक भागार के एक चतुर्थ भाग मात्र गोपुच्छ विशेष विस्तार वाले और 1.5× प्रमाण आयत क्षेत्र में, पहले क्या कहा 12×32 में एक, तो 4×12×32 में कितने, 4 होगी ना, समझ में आए त्रैराशिक। तो सदृश का अपनयन करके प्रमाण राशि का भाग देने पर गुणहानि के वो ग्रु हुआ गु करना, गुणहानि के अर्ध भाग मात्र प्रक्षेप अंक प्राप्त होते हैं यानी 4 प्राप्त होते हैं, उनको 1.5× में मिलाने पर यानी आधी गुणहानि प्राप्त होती है, उसको 1.5 में मिलाएंगे तो 2 हो जाएगी, 2 गुणहानियां होती है। देखो ये त्रैराशिक वाला यहाँ समीकरण वहां गुणाकार लिख दिया, 4×32×12/32, ये 4 हुआ प्रक्षेप अंक, वो 4×12 में मिलाना ओरिजिनल, हाँ तो 16 हो जाते हैं, 2 गुणहानि होती है। अथवा दूसरी पद्धति, निषेक भागहार के तीन चतुर्थ भाग मात्र गोपुच्छ विशेषों में, निषेक भागहार है 16 और उसका तीन चतुर्थ भाग यानी 12 मात्र गोपुच्छ विशेष यानी 12×32 में यदि एक प्रकृत गोपुच्छा प्राप्त होती है, 12×32 में एक गोपुच्छा ही डायरेक्ट निषेक ही प्राप्त होता है, तो 1.5× गुणित निषेक भागहार मात्र गोपुच्छ विशेषों में यानी 12×32 थे ना, तो 12×16×32, पहले 12×32 था, अब 16 गुणा किया ना उसमें एक और, निषेक भागहार के लिए 16 संख्या है, इतने गोपुच्छ विशेषों में कितनी प्रकृत गोपुच्छाएं प्राप्त होगी। इस प्रकार सदृश का अपनयन कर प्रमाण को इच्छा से अपवर्तित करने पर दो गुणहानियां, हाँ हुआ है, दो गुणहानियां प्राप्त होती है, ये डायरेक्ट मिलेगा, पहले तो हमको कितना ऐड करना है उसको मिला था, अब ये डायरेक्ट 16 है उसकी संख्या ही आ जाती है, उसके गुणकार की संख्या मिल जाती है। तो गोपुच्छ विशेष 32, निषेक भागहार 16, उनका तीर्थ तीन चतुर्थांश 12, चतुर्थांश करना था के ऊपर बिंदी लगाना, तो 32×12×16/384 यानी वो एक निषेक है ना, =16 लब्ध 16 होता है, इसका सब द्रव्य में भाग देने पर इच्छित निषेक आता है, 144/16=384। इसी प्रकार आगे जानकर भागहार कहना चाहिए, ये पद्धति ऐसी है, इसी पद्धति से विशिष्ट निषेक का भागहार निकलता है। अब द्वितीय गुणहानि के प्रथम निषेक, अब तक तो पहली गुणहानि ही चल रही थी, तो द्वितीय गुणहानि के प्रथम निषेक के प्रमाण से सब द्रव्य 3 गुणहानि स्थानांतर काल से अपहृत होता है। ये तो आसान है, पहले गुणहानि का पहला निषेक जो है 512, उसके लिए पूरा द्रव्य काहे से अपहृत होता था, 1.5× से, अब संख्या आधी हो गई, हाँ, तो गुणकार वो जो अपहृत होने वाला उसका अवहार जो है वो डबल हो जाएगा। पहले डेढ़ गुणहानि था, अभी तीन गुणहानि, डेढ़ का डबल तीन गुणहानि हो जाएगी। यथा प्रथम गुणहानि के प्रथम निषेक से द्वितीय गुणहानि का प्रथम निषेक आधा है, अतएव डेढ़ गुणहानि मात्र क्षेत्र को अर्थात डेढ़ गुणहानि प्रमाण आयाम वाले वो प्रथम गुणहानि के प्रथम निषेक प्रमाण विस्तार वाले, ऐसा ही अपना ही पहला 512 और 12 क्षेत्र जो आए तो वही लेना है। क्षेत्र को स्थापित कर मध्य में दो फालिया करके, अभी इसको दो ही फालिया कर देना है, 256 की दो फालिया हो जाएंगी, तो ये पूरा ही एक पीस यहाँ जोड़ देंगे तो डेढ़ और डेढ़ यानी 12 और 12 24 हो जाएगा, इन्हें तीन गुणहानि हो जाएगी। दो फालिया करके एक फाली के शीर्ष पर द्वितीय फाली को जोड़कर स्थापित करने पर तीन गुणहानि आयत और द्वितीय गुणहानि के प्रथम निषेक प्रमाण विस्तृत क्षेत्र होता है। ये उन्होंने ऊपर दो दो पीस नीचे दो पीस ऐसे संदृष्टि लिखी है, परंतु ये वर्टिकल दो करना और वो ऊपर वाली वो साइड में जोड़ देना है। अथवा एक गुणहानि के आगे गए हैं, अतः अभी दूसरी पद्धति बताते हैं। दूसरी गुणहानि है ना, यानी कितने से आगे गए, एक से आगे बढ़े, तो एक का विरलन करना एक रह गया, उसके ऊपर दो देना, अतः एक अंक का विरलन कर दुगुना करके परस्पर गुणा करने पर 1 × 2 दो ही रहेगी ना, परस्पर गुणा करके जो प्राप्त हो उससे डेढ़ गुणहानि को गुणित करने पर तीन गुणहानियां होती हैं। पहली गुणहानि का जो गुणकार था डेढ़ गुणहानि वाला उसको गुणा करना, इनका सब द्रव्य में भाग देने पर द्वितीय गुणहानि का प्रथम निषेक प्राप्त होता है 6144, उसको भाग देना है 24 से 256 आते हैं। आगे जान कर कहना चाहिए, आगे ने द्वितीय गुणहानि का प्रथम निषेक अभी उसी तरह से उसका निकालते रहना, अभी यहाँ चय भी आधा आधा होता चला जाएगा। तृतीय गुणहानि के प्रथम निषेक से सब द्रव्य छह गुणहानियों के काल से अपहृत होता है, क्योंकि वो द्रव्य और भी आधा हुआ, क्योंकि द्वितीय गुणहानि के प्रथम निषेक प्रमाण विस्तार वाले और तीन गुणहानि आयत क्षेत्र की मध्य में दो फालिया करके, अभी ये जो हमने यहाँ बनाया था पूरा ही, अभी स्टार्टिंग में आयत क्षेत्र किसको लेना है, 256 और 24, उसके फिर बीच में से करना और यहाँ स्थापित करना, ये तीन गुणहानियां थी और तीन बढ़ गई, हाँ, तो छह गुणहानियां डायरेक्ट हो जाएगी। जोड़ देने पर छह गुणहानि मात्र आयाम की उत्पत्ति होती है। संदृष्टि मूल में देखिए, ये ऊपर जो दी है, अथवा डेढ़ गुणहानि मात्र क्षेत्र की विस्तार की अपेक्षा चार फालियां करके एक फाली के ऊपर शेष तीन फालियों को क्रम से जोड़कर स्थापित करने पर छह गुणहानि आयत क्षेत्र होता है। ये पूरा ही पहले वाला ही लिया, हाँ, पहले वाला निषेक लेकर डेढ़ गुणहानि थी तो ऊपर तीन फालिया ऊपर रहेगी, हाँ, उसको पूरा साइड में जोड़ देना। अथवा दूसरी पद्धति, दो गुणहानि आगे गए हैं, तीसरी गुणहानि है ना ये, तो तो दो गुणहानि आगे गए तो दो का विरलन करेंगे, दो हर एक को दो दो देंगे, आपस में गुणा करेंगे तो चार हो जाएंगे, तो डेढ़ गुणहानि को चार से गुणा करना। तो दो गुणहानि आगे गए हैं, अतः दो संख्याओं का विलयन करके दुगुना कर परस्पर गुणा करने पर जो प्राप्त हो उसे डेढ़ गुणहानियों को गुणित करने पर छह गुणहानियां प्राप्त होती है। वन इंटू टू टू हो गया, दो गुना दो और गुना बारह, बारह इन्हें डेढ़ गुणहानि तो अड़तालीस हो गए। इसका सब द्रव्य में भाग देने पर तृतीय गुणहानि का प्रथम निषेक होता है। 6144 से 44 को 48 से भाग देंगे तो 128 आते हैं। इस प्रकार जितनी जितनी गुणहानियां आगे जाकर भागार इच्छित हो उतनी उतनी गुणहानि शलाकाओं का विरलन कर दुगुना करके परस्पर गुणा करने पर जो राशि प्राप्त हो उससे डेढ़ गुणहानि को गुणित करने पर गुणकार संख्या के आधे अंकों प्रमाण तीन गुणहानियां प्राप्त होती है, वे वहां के निषेक का भागहार होती है। उदाहरणार्थ चतुर्थ गुणहानि के प्रथम निषेक का द्रव्य लाना है, इसलिए दो गुना दो गुना दो तो आठ हो जाएगा। कितने आगे गए उसको लेना है ना, तो चौथी गुणहानि है तो तीन आगे गए हैं, हाँ तो दो को तीन बार लेना आठ आए, आठ गुना बारह छियानवे प्रमाण बारह गुणहानि, या गुणकार आठ का आधा चार को तीन गुणहानि चौबीस से गुणा करने पर बारह गुणहानि की छियानवे संख्या उपलब्ध आती है। यानी तीन गुणहानि चार बार ऐसा लिया, डेढ़ गुणहानि है आठ बार कहो या तीन गुणहानि चार बार कहो एक ही बात। नहीं गुणहानि आठ बारह गुणहानि हाँ बारी अठी शायन। इसका सब द्रव्य 6144 में भाग देने पर चतुर्थ गुणहानि के प्रथम निषेक 64 आता है। अथवा और एक पद्धति, अन्योन्य अभ्यस्त राशि से डेढ़ गुणहानि प्रमाण क्षेत्र को विस्तार से खंडित कर एक खंड के सिर पर शेष खंडों को परिपाटी से जोड़ने पर इच्छित गुणहानि के प्रथम निषेक प्रमाण विस्तृत और अन्योन्य अभ्यस्त राशि के अर्ध भाग मात्र तीन गुणहानि आयत क्षेत्र होता है। पहले हमने कितने आगे गए देखा था, अभी डायरेक्ट अन्योन्य अभ्यस्त राशि से गुणा करेंगे तो उसका आधा करना पड़ेगा क्योंकि चौथी गुणहानि होगी। तो हमने यहाँ तीन ही बार दो लिया था, वहां अन्योन्य अभ्यस्त राशि में चार बार दो लेना पड़ेगा, इसलिए बाद में फिर उसका आधा कर दिया। सेम तो संख्या तो वही आने वाली है। शंका, इस प्रकार डेढ़ गुणहानि प्रमाण भागार प्रत्येक गुणहानि के प्रति उत्तरोत्तर दुना दुना होता हुआ किस स्थान में पल्लोपम के प्रमाण को प्राप्त होता है? देखो देखो, एक गुणहानि हमने कितनी देखी थी, पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण देखी थी, जो असंख्यात प्रथम वर्गमूल होते हैं पल्ले के, बराबर है ना? तो कहते हैं ये डेढ़ गुणहानि प्रमाण भागहार प्रत्येक गुणहानि के प्रति दुना दुना, ये भागहार की संख्या कितनी है, पहले निषेक के लिए हमने डेढ़ गुणहानि देखी, शादी होती गई फिर दो हुई फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते इतनी गुणहानियां कितनी, अभी हमने 48 गुणहानियां देखी, ऐसे संख्यात संख्यात बढ़ेगी। तो ये उसकी वैल्यू, वो भागहार की वैल्यू पल्ले प्रमाण कब होती है, किस स्थान में पल्लोपम के प्रमाण को प्राप्त होता है, इस शंका के उत्तर में कहते हैं पल्लोपम के दो विभाग मात्र नाना गुणहानि शलाकाओं के अर्धच्छेदों के बराबर गुणहानियां आगे जाने पर वह पल्लोपम के प्रमाण प्राप्त होता है। कितनी गुणहानियां आगे जाना पड़ेगा उसके लिए क्या कहते हैं, क्योंकि डेढ़ गुणहानियों के लाने के लिए पल्लोपम के स्थापित भागार के साथ पल्लोपम की दो विभाग मात्र नाना गुणानी शलाकाओं की समानता पाई जाती है। देखो पल्ल्य उपम के दो विभाग मात्र, पल्ल्य के दो भाग करना यानी प बाय टू, उतनी नाना गुणानी शलाकाओं के अर्ध छेद, नाना गुणानी शलाका नहीं शलाकाओं के अर्ध छेद, जैसे चार चौथी गुणानी है तो उसके अर्ध छेद कितने, नाना गुणानी चार हुई उसका अर्ध छेद हुआ दो, उसके बराबर गुणहानियां आगे जाने पर वह पल्लोपम के प्रमाण को प्राप्त होता है। हाँ उतने आगे जाने पर उसकी बात नहीं, अभी इसकी बात ये अलग है, ये एक्चुअल में चल रहे हैं। ये किसकी नाना गुणानी, देखो 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 यहाँ फिर स्लो जाएंगे। देखो क्या कहते हैं, पल्लोपम के दो विभाग मात्र नाना गुणानी शलाकाओं के अर्ध छेदों के बराबर गुणहानियां आगे जाने पर वह कौन, भागहार वह भागहार पल्लोपम के प्रमाण को प्राप्त होता है। पहले पहले कितना था, डेढ़ गुणहानि था, डेढ़ गुणहानि यानी क्या है, पल्ले का असंख्यातवा भाग है, तो पल्ले का असंख्यातवा भाग हमने देखा डेढ़ गुणहानि डबल हुई, फिर उसके डबल हुई, उसके डबल हुई, उसके डबल हुई, हाँ हाँ, तो भागहार डबल होने के लिए कितना स्थान आगे जाना पड़ता है। देखो शुरू में हमारा भागहार कितना था, डेढ़ गुणहानि, डेढ़ गुणहानि का तीन गुणहानि कब हुआ, हाँ संख्या आधी हुई तभी, दूसरे गुणहानि में आधा हुआ, दूसरे गुणहानि में हुआ ना तो भागहार डबल हुआ, दूसरे गुणहानि में डेढ़ गुणहानि से तीन गुणहानि हुआ, तीसरे गुणहानि में छह गुणहानि हुआ, चौथे गुणहानि के बाद ये जो भागहार का प्रमाण है वहां के निषेक के लिए वो तो उससे डबल डबल होता गया ना, बारह गुणहानि, हाँ इस तरह से वो बढ़ता गया। तो अभी मूल में भागहार कितना था, डेढ़ गुणहानि ने पल्ले का असंख्यातवा भाग, तो असंख्यात पल्ले में असंख्यात पल्ले का असंख्यातवा भाग, असंख्यातवा भाग मिलाते जाओ, तो ऐसे कितने स्थान जाने पर वो पल्ल प्रमाण होगा भागहार, हाँ असंख्यात स्थान जाने पर, परंतु उसकी संख्या निकाल रहे हैं, वो असंख्यात की वैल्यू कैसे निकालना, हाँ तो उसके लिए कहते हैं पल्ले के आधे भाग का विभाग, यानी पल्ले के दो विभाग करना, यानी आधा पल्ले प्रमाण नाना गुणहानि शलाकाओं के अर्ध छेदों के बराबर गुणहानियां आगे जाने पर। देखो जितनी आगे कितनी गई है, हम कोई संख्या कैसे निकालते हैं, जैसे वहां उन्होंने बताया चौथी गुणहानी निकालना है, कितने स्थान आगे गए, तीन स्थान आगे गए, तो तीन स्थान आगे गए तो उसकी हमने दो इंटू दो किया, तो इतने स्थान आगे गए तो उसकी तीन तीन स्थान गए ना, तो टू इंटू टू इंटू टू किया यानी आठ किया, तो आठ के ये तीन ही अर्ध छेद हो गए। तो यहां कहते हैं इतने इतने नाना गुणहानि शलाकाओं के अर्ध छेदों के बराबर गुणहानियां आगे जाने पर वह पल्लोपम के प्रमाण को प्राप्त होता है। ये डेढ़ गुणहानि के बदले वहां पल्ले संख्या आती है, इतने अर्ध छेदों को गुणा करेंगे तो नाना गुणहानि आएगी, नहीं देखो क्या कहते हैं, पहले मेरे पहले हमारे कितना थे, डेढ़ गुणहानि, पल्ले का असंख्यातवा भाग था, हाँ, परंतु डायरेक्ट असंख्यात से वो असंख्यात कौन सी है, असंख्यात निकालना है, ये डबल करने पर वो जो डबल किया, फिर उसके डबल किया, उसके डबल किया, उसके डबल किया, ऐसे करते करते डबल 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 करते हैं, यानी वो दो गुना करते हैं ना हमने, जैसे हमको चौथे की निकालनी है, अभी इसकी वैल्यू हम इसमें सबमिट करेंगे, चौथे के लिए यही हमको, चौथे की कितनी आती है, कितनी गुनहानी आती है चौथे में, तो तीन स्थान आगे गए, 2 × 2 × 2 किया तो 8 हो गए, 8 से किसको मल्टीप्लाई किया, डेढ़ गुनहानी को मल्टीप्लाई किया, तो वहाँ 96 आ गए ना, यानी 8 बार डेढ़ गुनहानी हो गई, नहीं हाँ बराबर है, 8 बार डेढ़ गुनहानी हुई। तो अभी अभी क्या करना है, अभी हमको मूल में, हाँ पर अभी अभी उल्टा इसको करेंगे, तो 96 ने 8 बार कब होते हैं, 96 कब होते हैं ऐसा हमको लेना है, 96 कब होते हैं, पहले कितना था हमारा गुणाकार, 12 था, तो 12 को 8 बार कब हुआ, हाँ तीन बार बढ़ोती हुई, हाँ तो ये तीन, जिसका अर्धच्छेद तीन है, जिसका अर्धच्छेद तीन है, ऐसी संख्या निकालनी है ना हमको, ये कितनी आगे गया, तीन बार आगे गया ना, चार संख्या तीन बार आगे गया, तो तीन इटसेल्फ अर्धच्छेद है, जिसका तीन अर्धच्छेद है, तीन बार आगे गया, तो तीन किस संख्या का अर्धच्छेद है, 8 का, तो 8 से गुणा किया हमने, ऐसे ही यहां इसे किसे गुणा करना है कि जिसका अर्धच्छेद उतनी, जिस संख्या पर हमको जाना है, हमको प की वैल्यू निकालनी है, तो ऐसे अर्धच्छेद को डेढ़ गुणानी उसी असंख्यात को निकालना है ना, असंख्यात बहुत प्रकार के, पल्ले का असंख्यात का भाग भी असंख्यात है, तो उसको असंख्यात भाग से और मल्टीप्लाई भी किएंगे तो कुछ प का वर्ग नहीं होने वाला वहां, उसके असंख्य पल्ले का असंख्यात भाग कितने ही स्थानों तक पल्ले का असंख्यात भाग ही रहने वाला है। देखो इस प्रकार कितने किस स्थान में पल्लोपम को प्राप्त होता है, कितने स्थान आगे जाने कर बोला उन्होंने, कितने स्थान आगे जाने पर, अभी 4 की वैल्यू निकालनी है तो कितने स्थान आगे गए हम, किस स्थान पर, हाँ पहला स्थान पल्लोपम का आधा होता है, तो इतने स्थान आगे जाकर, क्योंकि वो पहले वाला स्थान के जैसे चौथा निकालना है तो तीन स्थान आगे जाकर कहते हैं, तो तीसरे स्थान में कितना होगा, तो इससे आधा होगा, हाँ इसलिए तो ये नाना गुनहानी शलाकाओं के अर्धच्छेदों, नाना गुनहानी शलाका नहीं लेना है हमको, उसमें भी आधा करना था ना हमको, चार की नाना गुनहानी शलाका नहीं हमको निकालनी है, नाना गुनहानी शलाका चार नहीं है, उसके एक कम वाले लेना है, तीन के साथ हमको इसको जोड़ना है, तीन को हमने विरलित किया था। हाँ नहीं, उनका कहना बराबर है, परंतु उसी को मैं समझा रही हूँ, चौथे स्थान पर है ना, तो हमने तीन प्रमाण नाना गुनहानी शलाकाओं को विरलित किया। इसीलिए उसके पहले स्थान पर उसका आधा ही होगा ना, वो हाँ, अन्योन्य अभ्यास राशि उसकी निकालनी है, उसके अर्धच्छेद है, हाँ उसकी अन्योन्य अभ्यास राशि निकालनी है हमको, उतने स्थान आगे जाकर, कितने स्थान आगे जाकर वैल्यू है ना हमको, तो वो स्थान हमको वो पहले वाले में मिलाएंगे तो वो आगे वाला स्थान आएगा, हाँ आधा के उतने स्थान आगे जाने, जैसे चौथा स्थान निकालना है तो तीन स्थान आगे जाकर, अभी दूसरा पैराग्राफ। इससे सब द्रव्य को अपहृत करने पर पल्यपम मात्र काल से अपहृत होता है, यानी वहां का आवहार काल पल्य है उस पोजीशन का। इसी प्रकार पल्यपम के द्वितीय भाग, तृतीय भाग, चतुर्थ भाग आदि रूप भागाहारों को सिद्ध कर लेना चाहिए। यद्यपि यह सच्छेद स्थान उत्पन्न होता है तो भी इसे बाल जनों के व्युत्पादनार्थ कहना चाहिए, यानी अपूर्णांकों में वो आएगा फिर भी वो समझ लेना कहते हैं। उसके आगे की गुणहानी के प्रथम निषेक से सब द्रव्य दो पल्योपम स्थानांतर काल से अपहृत होता है। अभी आ गई ना, जहाँ पल्य है उसके आगे की गुणहानी में कितना होगा, पल्य का दो पल्य हो जाएगा, भागाहार डबल होगा। ये तो उन्होंने द्वितीय भाग तृतीय भाग उसके पहले वाले की बात की, ये उसके नेक्स्ट वाला दो पल्ले हो जाएगा। इस प्रकार संख्यात अंकों के अर्धच्छेद मात्र गुणहानियां आगे जाकर, कितनी जितनी गुणहानियां आगे जाएगी उतनी दो गुना दो गुना दो गुना हो जाएगी, तो कितनी दो गुना होती है ना, पल्ले का दो पल्ले हुआ तो उसके लिए कितनी गुणहानी आगे गए, एक गुणहानी आगे गए, तो वहां से तीन गुणहानी आगे गए तो कितने गुना हो जाएगा, दो गुना दो गुना दो गुना इस, तो उसके अर्धच्छेद निकाले, उतने बार गुना गुना करना है ना, दो गुना दो गुना दो गुना, तो संख्यात अंकों के अर्धच्छेद मात्र गुणहानी आगे जाकर प्राप्त हुई गुणहानि के प्रथम निषेक के प्रमाण से सब द्रव्य कर्म स्थिति स्थानांतर काल से अपहृत होता है, यानी दो पल्य का चार पल्य, फिर आठ पल्य, सोलह पल्य, ऐसे होते होते संख्यात गए ना, तो संख्यात पल्य की एक कर्म स्थिति हुई, सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर कर्म स्थिति भी हम लेगी, वो भी संख्यात पल्य है, सत्तर कोड़ाकोड़ी मल्टीप्लाई बाय दस कोड़ाकोड़ी, क्योंकि दस कोड़ाकोड़ी का एक पल्य का एक सागर होता है, तो इन सागरों को पल्य करेंगे तो भी संख्यात में ही संख्या आएगी, हाँ 700 कोड़ाकोड़ी हो जाएगी, कोड़ाकोड़ी कोड़ाकोड़ी हो गए, कोड़ाकोड़ी को कोड़ाकोड़ी से मल्टीप्लाई किया है। इससे आगे अब ये तो संख्यात चल रही ना, उससे आगे जघन्य परिता संख्यात के अर्धच्छेद मात्र गुणहानियां आगे जाकर, जितनी गुणहानियां आगे जाएगी, कितनी अर्धच्छेद प्रमाण गुणहानियां आगे जाएगी, उतने प्रमाण दो दो गुना हो जाएगा, इसलिए अर्धच्छेद ले लिए उसमें, तो जघन्य परिता संख्यात अर्धच्छेद मात्र गुणहानियां आगे जाकर स्थित हुई गुणहानि के प्रथम निषेक से सब द्रव्य असंख्यात कर्मस्थिति काल से अपहृत होता है, क्योंकि असंख्यात स्थान आगे गए हम, ये असंख्यात के अर्धच्छेद प्रमाण आगे गए, तो उतनी बार दो संख्या लिख के गुणा करेंगे तो जघन्य परिता संख्या प्रमाण उसका संख्या आएगी, उससे वो डेढ़ गुणानी को गुण ये उस कर्म स्थिति को गुणा करेंगे तो असंख्यात कर्म स्थिति आ जाएगी वहां पर। इससे आगे सब निषेकों का असंख्यात कर्म स्थितियां भागार होता है, भागार होती है जाले होता है। इस प्रकार जाकर कर्म स्थिति के अंतिम निषेक के प्रमाण से सब द्रव्य कितने काल से अपरत होता है, यह अंतिम निषेक जो हमने अभी नौ समझा ना, पहले 512 गुना 12 किया था, अब वो घटते 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 कितना नौ रह गया, तो उसको कितने से गुणा करना, ऐसा पूछने पर उत्तर देते हैं वह अंगुल के असंख्यातवे भाग मात्र असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी स्थानांतर काल से अपरूत होता है। एक उत्सर्पिणी अवसर्पिणी मिलाकर कितना होता है, 20 कोड़ा कोड़ी सागर, ऐसे असंख्यात लेना। ऊपर तो आ गई गई थी बात असंख्यात कर्म स्थिति, क्योंकि पल्लोपम के असंख्यात पर प्रथम वर्गमूल प्रमाण अन्योन्य अभ्यस्त राशि से पल्लोपम के असंख्यात प्रथम वर्गमूल मात्र डेढ़ गुणहानि को गुणित करके सब द्रव्य में भाग देने पर अंतिम निषेक उत्पन्न होता है, वो उत्पन्न बराबर करना, ये उन्होंने एक्चुअल वैल्यू बता दी। यहाँ भागार की संदृष्टि यह है 768, 768 गुना 9 करेंगे तो अपनी संख्या आएगी, इसका सब द्रव्य में भाग देने पर अंतिम निषेक आता है। यहाँ सब प्रमाण यह है 6144, हाँ हाँ 8 आया क्या, नहीं बराबर 8 आता है, अंतिम निषेक 8 का, ये उन्होंने पहले 6300 में वो 9 लिया था ना, यहाँ 6144 लिया है इसलिए वो 8 आता है, अंतिम निषेक 8 आएगा। यहाँ टोटल द्रव्य की वैल्यू अलग ली है। यह असद्भुत प्ररूपणा है, क्योंकि एक तो कृतयुग्म रूप गुणहानियों और निषेक स्थितियों में 8 संख्या प्रमाण अंतिम निषेक बन नहीं सकता, ये 8 है ना अंतिम निषेक, तो कहते कृतयुग्म हमने देखा था जिसको 4 से पूर्ण भाग जाता है उसको कृतयुग्म राशि कहते हैं, तो गुणहानियों की जो संख्या है वो भी कृतयुग्म राशि होती है और निषेक स्थिति भी कृतयुग्म राशि, उसमें 8 संख्या प्रमाण अंतिम निषेक बन नहीं सकता, ये तो हमने कल्पना के लिए बताया था इसलिए यहाँ 8 संख्या आई, परंतु वो 8 नहीं हो सकता। दूसरे प्रत्येक गुणहानि का द्रव्य उत्तरोत्तर कृतयुग में, यानी क्या 8 को तो 4 से भाग जाता है, वो तो उन्होंने इक्वल लिया था इसलिए 6144 कर दिया इसलिए, बराबर असद्भुत प्ररूपणा है, क्योंकि एक तो कृतयुग्म रूप गुणहानि और निषेक स्थितियों में आठ संख्या प्रमाण अंतिम निषेक बन नहीं सकता। हाँ, और दूसरे, प्रत्येक गुणहानि का द्रव्य उत्तरोत्तर आधा आधा होता गया है, अतः सब द्रव्य में डेढ़ गुणहानि मात्र प्रथम निषेकों की संभावना भी नहीं है। हाँ, प्रत्येक गुणहानि में उतना नहीं होगा, ये साधिक हो जाता है। अब स्पष्ट अर्थ की प्ररूपणा करते समय इन चारों प्रकारों से, चार प्रकार ने ऊपर जो ये यहाँ लिखा है ना, संदृष्टि दी है इसी पृष्ठ पर, तो इन चार प्रकारों से प्रथम गुणहानि के क्षेत्र को फाड़कर, ये जो ऊपर लिखे ना यहाँ पर पेज नंबर 131 पर, एक ये मेरे ख्याल से पहले जो 144 जो है वो वाली है, वो 256 वाली है, तीसरी में तीन भाग किए हैं 16 256 16, और चौथी में वो 256 256 नीचे लिखे हैं। हाँ, वो फाड़ने वाले थे ना, पहले हमने देखे थे 256 256 की फाली की, फिर देखो इसको पढ़ेंगे, फिर फाड़कर डेढ़ गुणहानि मात्र प्रथम निषेकों को उत्पन्न कराना चाहिए। ये हमने पहले चार प्रकार देखे थे, वो पहला तो आसान था, वैसे ही नहीं, ये संदृष्टि अलग है। ये हमने अभी आगे पढ़ते, यहाँ पर देखो गाथाएं पढ़ेंगे। ये कैसे कैसे बनते हैं उसकी बात यहाँ लिखी है, ये बीच में जो अंक लिखे हैं ना, 16 फिर 56 88 वगैरह, इसके संबंध में गाथा है वो। ये यहाँ की संदृष्टि अपने को बराबर ख्याल में है उनके जो क्षेत्र की अपेक्षा लिखे हैं। देखो गाथा को पढ़ेंगे मैं। 16 56 तत्तो गो उच्छ विशेषेण हियाणि जावदुबे सद सोलस तत्तो यभिसद छप्पन्नम् अडदालसीदि बारस अहिय सदम तह सदम च चोद्दालम् छावत्तरि सदमेयम् अठत्तर विसद छप्पन्नम्। इसका अर्थ लिखते नीचे 16 56, अब ये जो ऊपर बीच वाला है ना, बीच में जो लिखा है 16 और 56 दो अंक लिखे, और उसके बाद प्राप्त होने तक 216 प्राप्त होने तक एक एक गोपुच्छ विशेष से उत्तरोत्तर अधिक, यानी 32 32 बढ़ते हुए, 56 के बाद 32 32 बढ़ते गए, ये बीच वाला है 56 88 120 152 184 216 और 256। 216 के बाद 32 कहां बढ़े, 216 तक हाँ, 16, 56 और 216 तक एक एक गोपुच्छ विशेष यानी 32 से बढ़ता हुआ हाँ, और बाद में पश्चात 256, वो तो 256 उन्होंने बता ही दिया, तथा 48, 80, 112, 144, 176, 208 और 256 ये चतुर्थ क्षेत्र के खंडों का प्रमाण है। इन दो गाथाओं द्वारा वहां चतुर्थ क्षेत्र के खंडों का प्रमाण जानना चाहिए। चतुर्थ क्षेत्र कौन सा पता नहीं लगा। मगर ये 144 वगैरह फिगर क्या लिखे वो नहीं समझ में आए। चतुर्थ क्षेत्र की चतुर्थ क्षेत्र का खंड देखो इसको पढ़ते। इन दो गाथाओं द्वारा वहां चतुर्थ क्षेत्र के खंडों का प्रमाण जानना चाहिए। इन क्रम से सब द्रव्य को प्रथम निषेक के प्रमाण से करने पर साधिक डेढ़ गुणहानियां होती है, क्योंकि यह द्रव्य अंतिम गुणहानि के द्रव्य को मिलाकर उत्पन्न कराया गया है। साधिक डेढ़ गुणहानि का प्रमाण यह है 12.5 यानी वो अभी तक जो हमने देखा था तो डेढ़ गुणहानि के आधार से देखा था, अब ये साधिक हो जाता है, साधिक डेढ़ गुणहानि। हाँ ये साधिक कितना है उसको यहां बताया। अब रुकते हैं यहां पर। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढो।